जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरिबल 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 नित्य गौर। गौर प्रेमानंद हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उमज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण। हम यहाँ राधा श्री राधाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में कथामृत उत्सव हो रहा है। आज चौथा दिन है, कल राधाष्टमी महामहोत्सव है। तो उत्सव का महत्व यह होता है कि आनंद। कुछ भी उत्सव हम मनाते हैं, आजकल गणेश उत्सव चल रहा है सब जगह पर, तो जीव का स्वभाव है सच्चिदानंद, उसे आनंद चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा रहता है कि बॉर्न टू बी फ्री, सबको मुक्त होना है, प्रसन्न आनंदी होना है। जैसे विलियम शेक्सपियर करके जो एक कवि थे, लेखक थे, उन्होंने लिखा था कि When we are born, we cry. Why? That we have come to the stage of fools. हम लोग जन्मते ही रोते क्यों हैं? कि हमको पता चलता है कि हम लोग एक मूर्ख की जगह पर पहुंचे हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवे द्विज। जन्म से व्यक्ति शूद्र, शूद्र मतलब कोई समाज या जात नहीं है, शूद्र मतलब खाली उसे अपने पेट पानी का सवाल है, खाली मराठी में पोटाची खड़गी भरण्याची फक्त इच्छा, खाली पेट भरने का खाली उतना ही वो सोच सकता है, उसके परे कोई सोच ही नहीं सकता है। उसे कहते हैं मंडेन, मतलब खाली भौतिक जीवन के प्रति संबंधित चीज़ों का खाली विचार करना। लेकिन सुप्रामंडल मतलब जो भौतिक, जो संसार है, भौतिक चीज़ें हैं उससे परे कुछ व्यक्ति जब सोचता है, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना है तो हमें इस भौतिक संसार के या भौतिक देह है, देह भावना से परे होकर जब सोचेंगे तभी हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। जैसे नीति शास्त्र में एक कथा आती है, एक मुर्गा था, और मुर्गा जो गांव में होते हैं, शहर में भी कभी भी मांग देते हैं, लेकिन गांव में जो मुर्गा होता है जब सूरज निकलने का समय होता है तभी वो बांग देता है ना मुर्गा। तो जब मुर्गे की बांग सुनते हैं तो लोग उठ जाते हैं, हाँ सर सूरज निकल गया, चलो चलो उठो उठो। तो कभी कभी वो समय लगाते हैं, हाँ मुर्गे की बांग हुए तो उठना चाहिए, सूरज निकल रहा है। तो वैसे ही मुर्गा गांव में रहता था और वो रोज बांग देता था, सूरज निकल रहा है उसी समय, उसका दोनों का टाइम एक ही होता था। लेकिन इस भौतिक संसार में ऐसा होता है कि अति परिचयत अवज्ञा, तो कुछ समय ज़्यादा रहने के बाद लोग थोड़ा भूल जाते हैं देखभाल करना। अच्छी देखभाल हो रही थी लेकिन बहुत दिन होते मतलब ठीक है अपने घर का है तो देखभाल थोड़ी कम हो गई, तो ये थोड़ा गुस्सा होगा, अरे आजकल को जब कोई मुझे देखता ही नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, तो मैं चलो इनको थोड़ा पाठ पढ़ाता हूँ, लेसन सिखाता हूँ, मैं गाँव छोड़ के जाता हूँ। जब क्योंकि मैं जब बांग देता हूँ तो सूरज निकलता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्या होगा, सूरज नहीं निकलेगा। तो मैं मेरी जो कृपा है सूरज निकलने की वो दूसरे गांव में देता हूँ, इसलिए वो दूसरे गांव में चला गया। और सच में ऐसा ही हो गया, उसने बांग दिया और सूरज निकल गया। तो वाह, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बांग देता हूँ तभी सूरज निकलता है। तो ये जो मुर्गे की फिलॉसफी थी उसमें दो गलतियाँ थी, एक क्या थी, एक तो वो सोचता था कि मैं जब बांग देता हूँ तभी सूरज निकलता है, या फिर दूसरी गलती थी कि खाली जो सूरज मेरी इच्छा से निकलता है, तो जब मैं बांग देता हूँ तभी सूरज निकलता है, और सूरज मेरी इच्छा से ही निकलता है। तो इस तरह से इस संसार में भी जीव अपनी जो मर्यादित अल्प बुद्धि है उससे सोचता है कि भगवान की लीला क्या है, ये कौन है, राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है। जैसे जन्माष्टमी के समय एक भक्त ने फोन किया, उसे किसी ने प्रश्न किया था, अगर कंस को पता था कि आठवां पुत्र, देवकी का आठवां पुत्र मारने वाला है, तो उसको इतना तो समझ में होना चाहिए कि देवकी और कौन, देवकी और वसुदेव को एक रूम में नहीं रखना चाहिए था, एक रूम में नहीं रखते तो पुत्र ही नहीं होते और उसको मरने का सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब हम ये अल्प बुद्धि से सोचते हैं कि कृष्ण जो है, जब स्त्री पुरुष एक, इस संसार में ऐसा होता है स्त्री पुरुष एक साथ आने से पुत्र होता है, जन्म होता है किसी का, तो इस भौतिक बुद्धि से अल्प बुद्धि से सोचता है कि वसुदेव देवकी एक साथ आ इसलिए कृष्ण प्रकट हो गए, नरसिंहदेव प्रकट होने के लिए कौन साथ आए थे, मत्स्य अवतार प्रकट होने के लिए कौन साथ आए थे, कच्छ अवतार प्रकट होने के लिए कौन साथ आए थे, वराहदेव प्रकट होने के लिए कौन साथ आए है ना। तो भगवान को प्रकट होने के लिए जरूरी नहीं कि श्री पुरुष को साथ आना ही है, उनका जन्म जो है भौतिक संसार के जीवों का जैसा जन्म होता है उस स्तर पे उनका जन्म नहीं होता है, वो दिव्य है, जन्म कर्म चैम्य दिव्यम, एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नैति मामित सो अर्जुन। भगवान का जन्म और कर्म जो है दिव्य है, और जब भक्तों से भगवान प्रकट होते हैं तो उनका प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ये तमाम प्रबद्धन्ते तामस तय भजाम। जिस प्रकार से जैसे वसुदेव देवकी उन्होंने तपस्या की थी, वो चाहते थे कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उनका प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान उनसे प्रकट होते हैं। वैसे इस संसार में जीव अपनी अतृप्त इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करता है, और जो कार्य करता है उससे और कर्म होता है और इच्छा प्रकट होती है, फिर वापस अतृप्त इच्छा पूरी करने के लिए वापस कार्य करता है, फिर वापस दूसरा कर्म तैयार हो जाता है, फिर वापस इच्छा अतृप्त इच्छा रहती है। इस प्रकार से कर्म करते करते जो है अतृप्त इच्छाओं को पूरी करते करते क्या तैयार हो जाता है, कर्म बंधन तैयार हो जाता है। लेकिन ये जीव का समस्या क्या है, इच्छा अतृप्त ही रहती है, कभी पूरी होती ही नहीं है। और लेकिन भगवान उनका एक नाम क्या है, आत्माराम, आप्तकाम, जिन जिनके कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, अपनी उनकी इच्छा जो है तृप्त है, आप्तकाम है। लेकिन फिर भी अगर भगवान कभी इच्छा करते भी है तो उनकी शक्तियाँ होती है, वो तुरंत उसको पूरी कर देते हैं। मतलब जिनकी इच्छा नहीं है फिर भी, या उनके कोई इच्छा ही नहीं तो कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, जब इच्छा है अतृप्त इच्छा है तो कार्य करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अतृप्त इच्छा ही नहीं है, अगर इच्छा होती भी है तो इस शक्तियाँ सारी कार्य कर देती है, तो उनको कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी भगवान आकर कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो ये इसलिए इसे क्या कहते हैं, लीला कहते हैं। कभी लोग कहते हैं भगवान कहते हो लीला है, हम करते हो कर्म है, इसलिए कर्म, क्योंकि आप जो करते हैं इस संसार में अतृप्त इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, इसलिए वो कर्म है। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है फिर भी वो कार्य करते हैं, इसलिए भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं, इसलिए कहते हैं कि जो लीला होती है उसका आस्वादन करना चाहिए, उस तत्व ज्ञान का विश्लेषण करना चाहिए। कभी कभी लीलाओं को लोग खींचते रहते हैं, या कोई हम दृष्टांत देते हैं उसको भी खींचते हैं, लेकिन उसका लीला का, जैसे वसुदेव और देवकी एक साथ है, वो लीला है, भगवान वो लीला करने आए हैं। पहले तत्व ज्ञान को विश्लेषण सुनते हैं कि कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी कैसे शक्तियाँ है, कैसे अलग अलग रूप में प्रकट होते, तत्व ज्ञान को विश्लेषण सुनते हैं तब लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली जब व्यक्ति लीला सुनने जाता है तभी कभी कभी वो लीलाओं को समझ नहीं पाता है। तो भगवान की जो अनंत शक्तियाँ है और भगवान की अधीन है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। जो भगवान की शक्ति जैसे अपनी छाया होती है, जब व्यक्ति चलता है तो उसके अनुसार वो छाया चलती है, छाया जो है व्यक्ति के अनुसार, जहाँ वो व्यक्ति जाएगा वही वो उसका छाया चलता है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। परंतु भगवान की एक शक्ति है, भगवान से निर्माण होते हैं लेकिन वो भगवान के अधीन नहीं है, बाकी सारी शक्तियाँ जो है भगवान की छाया के अनुसार, जैसे छाया होती है वैसे वो कार्य करती है। लेकिन एक शक्ति जो है उनसे निर्माण होती है लेकिन उनके अधीन नहीं है। से वो है भगवान की अल्लादिनी शक्ति। उसका वर्णन आता है कि श्रीमद् परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का जो श्रीमती राधारानी बुक है उसमें से पढ़ रहा था कि कैसे गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट होते हैं उसका वर्णन दिया है कि गोलोक वृंदावन में एक जगह है रास मंडल, और उसी के बाजू में एक पर्वत है शतश्रृंग, और वहाँ वही जो पर्वत है शतश्रृंग पर्वत, जब भौम लीला करने भगवान आते हैं, राधा कृष्ण आते हैं, तो वही जो शतश्रृंग पर्वत है गोवर्धन पर्वत के रूप में भूतल पर आता है। और ये जो सुंदर वृंदावन है वहाँ मालती मल्लिका इसकी सुंदर पुष्प वाटिकाएं हैं, और भगवान कृष्ण वहाँ उस पुष्प वाटिका में रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं, और उनके मन में इच्छा होती है कि मुझे आनंद लेना है। जब व्यक्ति कहीं बैठा होता है तो कुछ ना कुछ करते रहता है, चुप नहीं बैठ सकता, आजकल कुछ नहीं हुआ तो मोबाइल हाथ में लेके कुछ ना कुछ करते बैठे, तो ये वहीं से आता है, कुछ ना कुछ एक आनंद चाहिए। तो यहाँ आनंद भोगने की जब इच्छा होती है तो वह तुरंत भगवान कृष्ण के वाम भाग से एक शक्ति प्रकट होती है, और उनका सुंदर वर्णन जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधिका अष्टकम में करते हैं। तो कुंकुमात कांचन जस गर्वहारी गौरभा, पीछे भी बोल सकते हैं, कुंकुमात कांचन गर्वहारी गौरभ पीतनांत गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लभेश सूनु सर्ववांछितार्ति साधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। कुंकुमाक्त कांच नब्ज गर्वहारी गौरभा, श्रीमती राधारानी का सुंदर जो वर्ण है, मतलब थोड़ा सा कुंकुमाक्त जो कुंकुम है, थोड़ा सा कुंकुम आक्त लगा हुआ है, ऐसे जो अंग कांति है, जो सोने का जो कमल और सुवर्ण कमल है वो भी उनके सामने उसका गर्वहरण होता है। सुवर्ण कमल है, हम लोग तो कमल यहाँ से संसार में देखते हो अलग खाली पिंक कलर का है, लेकिन वहाँ जो स्वर्ण कमल है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का जो वर्ण है इतना सुंदर है, इतना तेज है, तेजपुंज है कि सुवर्ण कमल को भी हो उसका भी गर्व हरण करता है। गर्व हरि गौरभा पीतनाज ताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, और श्रीमती राधा रानी का जो मधुर सुगंध है, जो केशरयुक्त जो सुगंध है वो कमल का जो सुगंध होता है वो कमल के सुगंध से भी बहुत ही मधुर है। कमल का सुगंध भी उसके सामने, राधा रानी का जो सुगंध है उस कमल का सुगंध भी उनके सामने तुच्छ दिखता है। और वल्लभेश सूनु सर्व वांछितार्थी साधिका, और वल्लभेश जो नंद नंदन नंद महाराज का जो पुत्र है, ब्रजराज के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनकी सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रीमती राधा रानी तत्पर है, पूर्ण है। ऐसे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, और कौरविंद कांति निंद चित्रपट्ट साटिका कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। जो नाना रंग के जो रेशम वस्त्र है श्रीमद राधा रानी जो है सुंदर जो विविध अलग अलग रंगों के जो वस्त्र परिधान करती है, वो वस्त्र इतने तेजपुंज है, इतने कलरफुल है, जो कौरविंद जो समुद्र में जो एक स्फटिक मिलता है, जो पत्थर मिलता है जो बहुत सुंदर होता है, वो कौरविंद जो पत्थर है उससे भी राधा रानी के जो वस्त्र है वो कौरविंद को भी पराभूत कर देते हैं, इतने राधा रानी के वस्त्र सुंदर है। कुछ इस संसार के हम जब श्री राधा कृष्ण का जब वर्णन करते हैं, उनका वस्त्रों का, उनके सौंदर्यता का वर्णन करते हैं, इस संसार के जो सर्वोत्तम बेस्ट जो चीज़ें हैं उसका वर्णन करते हैं, लेकिन उसके साथ भी कोई बराबरी नहीं होती है, कोई तुलना नहीं होती है, लेकिन इस संसार में सबसे सुंदर वही है इसलिए हम उसका वर्णन दे सकते हैं, लेकिन वो तो पूरा दिव्य है। तो कृष्ण मत्त भृंग के लिए फुल्ल पुष्प वाटिका, कि जो श्रीमती राधारानी एक इतना उनका आकर्षण है, जैसा एक भ्रमर होता है वो फूलों के प्रति हमेशा आकर्षित रहता है, कभी अगर राधा मदन मंदिर में जपा करने जाओ या दर्शन के लिए जाओ तो वहाँ आसपास में सुंदर पुष्प वाटिका है ना, और कितने सारे भ्रमर जो है मंदिर के आसपास में खासकर पुष्प वाटिका में भ्रमण करते रहते हैं, वैसे राधा रानी का सौंदर्य उनकी मधुरता इतनी आकर्षित है कि कृष्ण रूपी भ्रमर जो है उनके प्रति राधा रानी के प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण मत्त भृंग के लिए फुल्ल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, और रोज कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधिका सूर्यकुंड पर पूजा करने जाती है, ऐसे श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे सुंदर वर्णन जो है वहाँ श्रीमती राधा रानी का आता है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बाजू में रत्न सिंहासन पर विराजमान है, और ये भगवान की अल्लादिनी शक्ति, सारी शक्तियाँ भगवान के अधीन है, लेकिन ये अल्लादिनी शक्ति के अधीन भगवान है। तो ये भौतिक संसार में हमेशा एक सर्वसाधारण एक युवक युवती या स्त्री पुरुष समान राधा रानी के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन कोई भौतिक स्त्री नहीं है, सच्चिदानंद छिन्मय है, और स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करते हैं, जो मदन मोहन है, इस संसार का हर जीव मदन के प्रति आकर्षित है। देखिए इस संसार में कुछ भी चीज़ लेने जाओ तो चीज़ के ऊपर ऐसा चित्र होगा जिससे व्यक्ति की काम भावना प्रकट हो, फिर लाइट का बल्ब भी लेने जाओ कोई उसका संबंध नहीं है, फिर भी वैसा ही कोई सुंदर स्त्री या पुरुष का चित्र होगा जिससे वो काम भावना, क्योंकि सब लोगों को पता है कि हर जीव के अंदर एक काम भाव जो है इतना तीव्र है, तो हम इसके द्वारा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। फिर कोई भी कपड़ा लो या बल्ब लो या कोई वॉशिंग पाउडर लो, कुछ भी लो, लेकिन कोई तो ऐसा जिससे काम भाव जो है प्रकट होगा। तो ये मदन है, इस मदन जो है इस संसार में सबको उंगली पे नचाता है, घुमाता है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लोगों को बस मुंह में फेंस आने तक काम कराता है। कौन है? मदन काम। और कृष्ण कौन है? मदन मोहन। जब कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, हरिनाम के प्रति जब आकर्षित होता है, तो ये मदन इसके प्रति अपने आप ही वो क्या होता है, परम दृष्टवा निवर्तते। जब व्यक्ति को भगवान के सौंदर्य के प्रति, जैसे हम देखते श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रसंग में कैसे धनुर्धर जो था, धनुर्दास, वो एक सुंदर स्त्री के आंखों के प्रति इतनी आकर्षित थे कि वहां पर बड़े शोभा यात्रा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य खाली वो छाता लेकर चल रहा है। और कैसा चल रहा है, एक सुंदर सी युवती जा रही है और उल्टा चल रहा है उसके, तो देखते देखते उल्टा चल रहा है। सब लोग हंस रहे थे। श्रीपद रामानुचार्य अपने शिष्य को भेजते कि क्या बात है, जरा पूछो। तो कहता है कि मैं इस सुंदर जो स्त्री है इसके आंखों के प्रति आकर्षित हूँ, इससे सुंदर चीज मैंने देखी नहीं संसार में। तो रामानुचार्य कहते कि इससे सुंदर मैं आपको दिखाऊं? तो बोले हाँ, मैं उसके प्रति। तो वो सौंदर्य का ये था। इसलिए रामानुचार्य जब दूसरे दिन उन्हें श्रीरंगम भगवान रघुनाथ के यहाँ लेकर गए, और श्रीपाद रामानुचार्य कृपा से जब वो धनुर्धर जब वो भगवान रघुनाथ के आंखों को देखा, तो इतने आकर्षित हो कि सब कुछ छोड़ दिया, परम दृष्टवान और तथा। अफकोर्स श्रीपाद रामाचार्य ने उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया। लेकिन जब व्यक्ति को भगवान का सौंदर्य, भगवान की कृपा का जब आकर्षण होता है, भौतिक संसार के आकर्षण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये मदन मोहन है कृष्ण, और कृष्ण को ही जो आकर्षित करते हैं वो है मदन मोहन मोहिनी। तो जो अल्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो रास मंडल में प्रकट होती है और तुरंत भगवान की, जब वो रास मंडल प्रकट हुई है और कृष्ण के लिए कुछ फूल पुष्प लाने हैं, इसलिए तुरंत भागती है, धावती। तुरंत तो जब भागते हैं तो इसलिए उनका नाम है राधा। रास मंडल में प्रकट हुए अनुराग प्रेम इसकी मूर्तिमंत स्वरूपा है, इसलिए रा और धावमान हमेशा कृष्ण के सेवा के लिए धावती धावमान, इसलिए धा राधा। तो भगवान की शक्ति है और उनको ही वो आनंद देती है, इसलिए राधा। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी, सही शक्ति द्वारे सुख आस्वाद्य आपनी। मतलब कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति है, उनका नाम है जो आह्लादिनी शक्ति, सही शक्ति द्वारे सुख आस्वाद्य आपनी। कृष्ण लादिनी शक्ति से अपना अपने को सुख प्राप्त करते हैं, आह्लाद आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण के शाश्वत संगिनी हैं। और अगर व्यक्ति कोई खाली राह, खाली अगर राह भी बोलता है तो तुरंत उनको कृष्ण के चरण कमलों के प्रति एक आकर्षण, उसका एक गति शुरुआत हो जाती है खाली राह उच्चार करने से। जैसे मराठी में संत कहते हैं कि बहुत सुकृतांच जोड़ी मनु ने विठ्ठल आवड़ी। जब सुकृत एकत्रित होते हैं तो हमें भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है, रुचि पैदा होती है। खाली राह स्मरण करने से ही कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षण होता है। तो सारे जो गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी के केश रंध्र से प्रकट होती हैं। गोपियां जो है राधा रानी के केश रंध्र से प्रकट होती है, और महालक्ष्मी जो वैकुंठ में हम लक्ष्मी नारायण जो कहते हैं, वो महालक्ष्मी वो श्रीमती राधा रानी के बाएं भाग से प्रकट होते हैं। और उनके जो अंश रूपा है वो राजलक्ष्मी है, जो इस संसार में जो राजे महाराजे हम देखते हैं उनके पास इतना वैभव होता है, करोड़ों करोड़ों जो वैभव होता है वो राजलक्ष्मी से आता है। वो राजलक्ष्मी को ना महालक्ष्मी की अंश रूपा है, और राजलक्ष्मी के भी अंश रूपा है मर्त लक्ष्मी, जो इस भौतिक संसार में, जो ग्रह शास्त्र में, इस संसार में जो धन धान्य भरपूर प्रमाण में हमें प्राप्त करा कर देती है। दीपावली का सबसे बड़ा जो दिन क्या होता है, जो बड़े बड़े आतिशबाजी होती है उस दिन, क्या होता है? लक्ष्मी पूजन होता है। और क्या करते हैं लोग? अपने सारे खिड़की दरवाजा खोल कर रखते हैं और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कहीं से तो अंदर आ जाए। तो मर्त लक्ष्मी जो इस संसार में जो घर गृहस्थ है उनके जीवन में जो ऐश्वर्य देती है, इस प्रकार श्रीमती राधा रानी इस भूतला पर जब प्रकट होते हैं, इसका अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आता है। इसे कल्पभेद भी कहते हैं, अलग अलग कल्पों में वर्णन अलग आता है। तो श्रील रूप गोस्वामी श्री ललित माधव ग्रंथ में जब पूर्णमासी देवी गार्गी जो गर्ग मुनि की पुत्री है उनको वर्णन करते हैं, पूर्णमासी देवी, तो ये ललित माधव से वर्णन आता है। एक वर्णन आता है जब वृषभानु महाराज को सुवर्ण कमल में राधा रानी प्रकट हुई थी, और ये वर्णन आता है ललित माधव से कि एक बार विंध्य जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, तो विंध्य जो पर्वत है हमेशा हिमालय से स्पर्धा करता है। उसका हमेशा कभी एक संसार में एक स्वभाव होता है कि अपने से कोई अगर अगर बढ़ना जाता है, उसके अपने से ज़्यादा किसी के पास है तो क्या होता है? ईर्ष्या होती है। तो हिमालय और विंध्य का भी ऐसा ही है। हिमालय के पास क्या है, बहुत ही ऋषि मुनियों का वहाँ पर आश्रय स्थान है, और सबसे महत्वपूर्ण है जो हिमपुत्री है माता पार्वती, ये हिमालय की पुत्री है। उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, उनके दामाद कौन है? स्वयं भगवान शिव जी है। तो इतना वैभव, किसी के पास अगर कोई विशेष व्यक्ति है या विशेष वस्तु है और दूसरे के पास नहीं, तो क्या होता है? ईर्ष्या होता है। तो विंध्या को भी ईर्ष्या होती, करे इतना सब कुछ इसके पास, हिमालय के पास, और मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए ईर्ष्या होती। रो ये प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। किस लिए? मुझे ऐसी पुत्री चाहिए कि जिसका पति शिवजी को भी युद्ध में हरा सके, शिवजी को भी समुंदर में हरा सके, तब मैं अपना कॉलर टाइट करूंगा कि हाँ हिमालय से मैं बढ़कर हूँ। तो वहाँ विंध्या ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है, और कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आकर उसे कि वत्स वर मांगो, तो कहता है कि मुझे ऐसी पुत्री दो कि जिसका पति शिवजी को हरा सके। और शिवजी ब्रह्मा जी जो है, जब कोई कठोर तपस्या करते हैं तो इतने कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रसन्नता में वर दे बैठते हैं, फिर बाद में सोचते करे इसका क्या होगा। हिरण्यकश्यप को वर दे दिया, फिर बाद में सोचने लगे कि अभी क्या होगा। तो यहाँ पर भी विंध्या को वर तो दे दिया, लेकिन अभी ऐसी पुत्री कौन होगी वो बाद में सोचने लगे। तो तभी याद आया कि अरे हाँ, कृष्ण इस धरातल पर लीला करने के लिए आने वाले हैं, तो जरूर उनकी अलादनी शक्ति भी आएगी। तो तुरंत ब्रह्मा जी श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, और राधा रानी को प्रसन्न कर कहते कि हे माते, आप तो जानती है क्या हो गया, तो मैंने तो वर दे दिया है विंध्या को, और आप भी जानते कृष्ण लीला करने के लिए आने वाले, तो आप भी जरूर आएंगे, आएंगे उनके साथ। तो खाली इतना करो कि विंध्या की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। तो जैसे हम कृष्ण हमें देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी गर्भ स्थलांतर होता है। यहाँ श्रीमती राधारानी चंद्रावली, यहाँ श्रीमती राधारानी माता कीर्तिदा ऋषि भानु के यहाँ गर्भवती है माता कीर्तिदा, और यहाँ चंद्र भानु जो ऋषि भानु महाराज के भाई है उनकी पत्नी के घर में चंद्रावली है। और दोनों के जैसे बलराम जी का स्थलांतर किया, वैसे यहाँ पर भी दोनों माताओं से गर्भ स्थलांतर करके विंध्या की जो पत्नी है उनके घर में उनको भेज दिया। और जब उनका प्राकट्य हुआ तो विंध्या तभी इनको कौन को पता चल गया था कि यहाँ तो क्योंकि दुर्गा ने कहा दिया कि तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है और मेरी जो स्वामिनी वो भी प्रकट हो गई है। तो तुरंत कंस ने एक महीने के अंदर जितने भी बच्चे जन्म आए हैं प्रकट हुए सबको मारने के लिए कहा दिया। तो एक पूतना जो है विंध्या पहुंच गए और वहाँ विंध्या से दोनों को उठाकर ले जा रहे थे। और जब ब्रजभूमि आई तो योग माया ने क्या किया, इतना उनका वजन बढ़ा दिया और पुत्रा के अंदर इतना उसको त्रस्त होने लगी, उन्हें दोनों पुत्रियों को छोड़ दिया। और एक चंद्रभानु महाराज को पहले विदर्भ में आई मिली विदर्भ राज को, फिर वो चंद्रभानु महाराज के पास पहुंचे और एक ऋषभानु महाराज के हाथ पहुंची श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी हमारे हम तो ये पात्रता तो है नहीं कि कुछ बोले, लेकिन मैं खास करके पढ़ के आया हूँ, जो पढ़ के आया हूँ बोल रहा हूँ कि पात्रता नहीं है। तो रघुनाथदास गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी का। राधा कुंड के तट पर लोटपोट होते हैं, याचना करते और प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, तव एव अस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते देहि त्वं नयमाम चरणांतिकम्। प्रार्थना करते कि तव एव अस्मि, दो बार का तव एव अस्मि, मैं आपका हूँ, तव एव अस्मि, मैं आपका हूँ श्रीमती, मैं आपका हूँ इति विज्ञायते देहि त्वं। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, न जीवामि त्वया बिना, मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूं। ये सारे आजकल जो मूवीज में जो डायलॉग्स बोलते हैं ना, ये सारे भगवान कृष्ण के राधा रानी के चुराए हुए डायलॉग्स हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनके चुराए हुए डायलॉग्स हैं। आपके बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा ना, लेकिन ये भगवान को बोलने के डायलॉग है, राधा रानी को बोलने के डायलॉग है, लेकिन लोग अपने एक दूसरे के लिए बोलते हैं। तो रघुनाथदास गोस्वामी कहते हैं न जीवामि त्वया बिना, क्यों कहते हैं, क्योंकि रघुनाथदास गोस्वामी हम जानते हैं कि राधा कुंड के तट पर कितने वो समरस हो जाते थे लीला में। हम देखते जब एक बार हरिनाम कर रहे हैं रघुनाथदास गोस्वामी और इतने समरस हो गए, इतने तल्लीन हो गए, और ग्रीष्म ऋतु है, धूप है, और इस वाड़ा में जो हम धूप देखते हैं वृंदावन के ब्रज की धूप जो यहाँ 30-35 हो सकता है, तो वहाँ 55 के आसपास ज़्यादा तापमान, ऐसी धूप में रघुनाथदास गोस्वामी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इतना हृदय इनका प्रेम से ओतप्रोत है, और अचानक सनातन गोस्वामी आते हैं और देखते हैं कि इतनी कड़ी धूप है कि कोई इसे कड़ी धूप में बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं पा रहा है, और ऐसे में रघुनाथदास में तल्लीन है, और देखते हैं कि आसपास में कड़ी धूप है लेकिन रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर जो है क्या है, एक छाया है। इस मतलब छाया कहाँ से आ गया इतना, तो शाडो कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी जो है अपने पल्लू को पकड़ कर रघुनाथ गोस्वामी को क्या दे रही है, शैडो दे रही है, छाया दे रही है, तो उनको पसीना आ रहा है, है? तुरंत सनातन गोस्वामी आकर उनको कहते कि अरे ये क्या कर, जिनकी हमारी आराध्य देवी है इनकी हमें सेवा करनी है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ करें इनको हमारी सेवा करनी पड़े। तो कभी कभी इतने तन्मय हो जाते थे, तलीन हो जाते थे, और कभी कभी ध्यान टूट जाता था। राधा रानी का, सखियों का, लीलाओं का ध्यान करते करते रघुनाथ गोस्वामी का ध्यान टूट जाता था, और वो टूटे जब ध्यान टूट जाता था वो विरह में जाते थे और लोटपोट हो जाते थे, रोते थे, और तभी राधा रानी से ये प्रार्थना करते, न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते देहि त्वं नयमां चरणांतिकम्, कृपा आपके चरणों का आश्रय दो, कृपा दो ताकि मैं आपकी लीलाओं को ध्यान कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं। और आगे प्रबोधानंद सरस्वती जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु हैं, वो भी सुंदर वर्णन करते हैं। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्वरतु में हृदिकेले सिंधु। सिंधु मतलब सागर, महासागर। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? वैदग्ध सिंधु, वैदग्ध मतलब खेल क्रीड़ा जो आनंद, उसके सिंधु है, सागर है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, अनुराग रसक मतलब, तो कृष्ण प्रेम का जो, कृष्ण प्रेम का जो रस है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रस की सागर है। और वात्सल्य सिंधु, अपने भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है, प्रेम है, ये श्रीमती राधा रानी करुणा के मूर्तिमंत स्वरूप है, सागर है। वात्सल्य सिंधु अतिसांद्र कृपैक सिंधु, और भक्तों के ऊपर जो कृपा वर्षाव करने वाला वाली जो है श्रीमती राधा रानी, सिंधु है, सागर है। और लावण्य सिंधु सौंदर्य का सागर है, लावण्य सिंधु। इस संसार का जो सौंदर्य है, अगर गंधर्व जो अप्सरा जो है इनके सामने ये संसार के विश्व सुंदरी भी अगर आ जाए, तो अप्सराओं का जो सौंदर्य है इतना है कि ये पता ही नहीं चले कि यहाँ पे कोई सुंदरी आई है, इतना अप्सराओं का फीका पड़ जाएगा। लेक्चर में सुन रहा था कि इस संसार का सबसे सुंदरतम अगर कोई है वो अप्सरा के सामने आ जाए तो कॉकरोच के समान दिखेगा वो, ऐसा यहाँ का सौंदर्य अप्सराओं का सौंदर्य है। लेकिन अप्सराओं का जो सौंदर्य है, जो वैकुंठ की लक्ष्मियाँ हैं, लक्ष्मी हैं, उनके सामने अप्सराओं का सौंदर्य भी तुच्छ हो जाता है। और लक्ष्मी का जो सौंदर्य है, जो साकेत धाम में जाते हैं, माता सीता का सौंदर्य है, लक्ष्मी का सौंदर्य भी वहाँ फीका पड़ जाता है। और द्वारका की जो रानी है उसके सामने साकेत धाम का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। और जो द्वारका की रानी है उनका सौंदर्य, गोपियों का जो सौंदर्य है, गोपियों का सौंदर्य के सामने द्वारका की रानिया का सौंदर्य भी जो है फीका हो जाता है। और गोपियों में सबसे सुंदरतम जो है, सर्वश्रेष्ठ सुंदर जो है कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो ये लावण्य सिंधु अमृत छविरूप सिंधु, तो श्री राधिका स्मृत में हृदिकेले सिंधु है श्रीमती राधा रानी। आचार्य कहते हैं कि आप इतने वात्सल्य सिंधु है, वैदिक सिंधु, अनुराग सिंधु, लेकिन मेरा जो हृदय है वो कैसा सिंधु है? वो खारे पानी का जो सागर होता है ना, वैसा सिंधु है मेरा हृदय जो है। ये जो खारा पानी होता है, यहाँ से आते हैं ना सागर में, कैसे खारा पानी होता है, तो ऐसा ही मेरा हृदय है। तो एक बिंदु अगर आपका कृपा का मिल जाए तो मेरा हृदय जो है आपके प्रेम से, आपकी कृपा से भर जाएगा, यही मेरे लिए आशा है। और आगे सुंदर वर्णन करते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखे अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। कहते कि कौन श्रीमती राधारानी का क्या भाव है, कौन है श्रीमती राधारानी? कहते कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखे, जिनके पास जाने के लिए, किसके पास? कृष्ण के पास जाने, भगवान कृष्ण को मिलने के लिए ब्रह्म रुद्र शिवजी शोक नारद भीष्म अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये जो महान पुरुष है इनको भी अगर कृष्ण से मिलना है क्या करना पड़ता है? वेटिंग लिस्ट में, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वृंदावन में जब ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है, तो सेवक ने जाकर कहा कि आपसे ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी कौन से ब्रह्मा है? तो सेवक जाकर कहता है कि भाई कौन से ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी बिगुल हो गए, अरे इस ब्रह्मांड में तो मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, और कौन ब्रह्मा है? तो कहते कि जाकर कहो चतुष कुमार के पिता ब्रह्मा आए, कुमारों के पिता ब्रह्मा आए, तो तब जाकर हाँ ठीक है भेज दो। जब ब्रह्मा जी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस महल में खाली वो एक ब्रह्मा नहीं, इनके चार मुख है, किसी के 10 मुख है, किसी के 100 मुख है, किसी के 1000, किसी के लाखों मुख है, और सब अपने क्राउन्स के साथ ऐसे नमन करे भगवान को, सारा क्राउन्स का आवाज आ रहा है, धार 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 धार। तो ऐसे ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म इनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, किनके सामने? भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। पुरुषेश तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम, लेकिन ऐसे पूर्ण शक्तिमान है उनको वशीकरण अगर करना है, अगर वश करना है, आजकल बाहर चलता है ना भगतबाज वशीकरण, तो वशीकरण करना है तो ऐसे कृष्ण का, जिनके सामने ये सारे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, ऐसे कृष्ण का वशीकरण करना है तो क्या करना है? एक चूर्ण है, क्या चूर्ण है? तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि, तम राधिका चरण, राधिका के चरण रेणु, चरण रज जो है इसको अगर कोई प्राप्त करता है तो वो कृष्ण को वशीभूत करता है, वशी अपने नियंत्रण में रखता है। राधा राधा रानी के कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कई बार आपको 2-3 दिन से हम लोग सुन रहे कि सुखदेव गोस्वामी इतना सब वर्णन करते फिर राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं करते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमती राधा रानी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करने ही वाले थे, लेकिन तब उन्होंने सोचा कि मैं तो राधा रानी के हाथ का शुक हूँ, पोपट हूँ, तो अगर मैं वर्णन करने लगूँ राधा रानी का तो क्या हो जाऊँगा? वो भाव विभोर हो जाऊँगा, महाभाव में चला जाऊँगा, और कृष्ण महाराज के पास समय बहुत कम है। इसलिए उन्होंने राधा रानी का वर्णन करते समय आराधितो करके वर्णन किया है, अनाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, कि गोपियां कहते हैं कि निश्चित ये जो गोपी है जिनको कृष्ण ले गए हैं, जरूर इसने बहुत अपने प्रेम से, अपने भक्ति भाव से, आराधना से कृष्ण को प्रसन्न किया है, इसलिए हमको सबको छोड़कर कृष्ण खाले वो गोपी को लेकर गई है। आराधितो, अपने आराधना से उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न कर कृष्ण उसे एकांत स्थली लेकर गए। तो यहाँ भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि क्यों सुखदेव गोस्वामी, आपको अलग अलग आचार्य अलग अलग वर्णन करते हैं, तो यहाँ भागवत में क्यों नहीं बताया? तो भक्तिशास्त्र सरस्वती बहुत एक इस भौतिक संसार का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक राधा रानी का नाम जो एक मोती के हार के समान है, मोती का हार होता है उसके समान है एक, और मोती का हार अगर किसी बंदर के हाथ में दो तो क्या करेगा? तोड़ देगा या वहां फेंक देगा, छिन्न भिन्न कर देगा उसे। तो वैसे एक राधा रानी का जो नाम है मोती के समान, इसलिए इस भौतिक संसार के लोगों के सामने वो सहजता से सुखदेव गोस्वामी नहीं देना चाहते थे। इस भौतिक संसार का जीव, इसका स्वभाव क्या है? बंदर के समान। मर्कटस्य सुरापानम तत्र ऋषिक दंशनम तद मध्य भूत संचारम यद्वा तद्वा भविष्यति। क्या है कि मर्कट सुरापान, एक बंदर है, सुरापान किया उसने, दारू पिया, तो क्या होगा? और उसके बीच में वो जंगल में गया, पत्थर के ऊपर गिरने लगा तो बिच्छू ने काट दिया, तत्र ऋषिक दंशनम। उसमें फिर वापस कहीं कोने में जाके गिर गया तो भूत संचार हो गया, तो क्या करेगा? कुछ नहीं, भरोसा नहीं। उसी संसार में इस जीव ने क्या किया? सुरापान किया। क्या? मैं ये शरीर हूं, सुरापानम। ऊपर से तत्र ऋषिक दंशनम, उसे क्या हो गया? थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा ऐश्वर्य आ गया, तत्र ऋषिक दंशनम। और तद मदे भूत संचारम, क्या भूत संचार हो गया? पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। तो ऐसा जीव अगर है जिसको पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, हर व्यक्ति मुझे सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति ने मुझे आदर करना चाहिए, अगर ऐसे व्यक्ति का स्वभाव, वो हर व्यक्ति जो है अपना स्वामी बनने की इच्छा है, स्वामी का सुरापान किया है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर राधा रानी का नाम दो तो क्या करे? यद्वा तद्वा भविष्यति। इसलिए भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इसलिए शिवदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम वहाँ पर वर्ण डायरेक्टली बोला नहीं है, उन्होंने क्या किया? प्रेम वस्त्र में उसको ढक के रखा। ऐसे यहाँ हम तो कल श्रीमद् राधा गोपीनाथ प्रभु से सुनने वाले हैं, तो मैं सब कुछ बताऊंगा नहीं। तो बहुत सारे राधा रानी की सुंदर लीलाएं हैं। तो हम देखते हैं कि एक खास, हमेशा हम जो लीला सुनते हैं, राधा रानी ने जब नेत्र खोले, वैसे एक नारद मुनि जब उनको पता चला कि कृष्ण और उनके अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी यहाँ धरातल पर प्रकट हुए हैं, नंद भवन में गए, वहाँ कृष्ण को दर्शन किए, फिर वो राधा रानी का दर्शन करना चाहते थे। और जब हर एक, क्योंकि कहीं तो प्रकट हुई है, इसलिए हर एक ब्रजवासी के घर में नारद में जा रहे हैं, हर एक घर में जाकर पूछ रहे कि आपके पुत्र कैसे है, आपकी पुत्री कैसी है, मुझे मिलना है। मतलब तो कोई भी साधुगण आते हैं तो चाहते कि अपना कुटुंब को सामने ला कर आशीर्वाद दो, तो हर एक अपने पुत्र को ला रहे, पुत्री को ला रहे, तो सबको नारद में देख रहे, लेकिन उनको पता है कि ये नहीं है, ये नहीं है। और जब ऋषभानु महाराज के वहाँ जब पहुँचे, तब उन्होंने एक ऋषभानु महाराज ने उनका स्वागत किया। ऋषभानु महाराज जब उनसे उनसे कहते हैं ऋषभानु महाराज को कि आपके पुत्री कैसे है, पुत्र कैसे है, तो तुरंत तो श्रीदामा को सामने ले आते हैं ऋषभानु महाराज। श्रीदामा को देखते नारद मुनि तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अपने गले लगाते हैं और कहते हैं, उसका इतना तेज पुंज उनका स्वरूप देखकर नारद मुनि कहते हैं कि ये जो आपका लड़का है ये एक कृष्ण बलराम का बहुत आनंद देगा, बहुत प्रसिद्ध होगा, बहुत उनको आनंद देगा। तो इस तरह से उनका वर्णन करते हैं। जब निकलने लगते हैं तो ऋषभानु महाराज वापस उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री भी है, इनकी सिस्टर भी है, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आंखें बंद है, बोल नहीं पाते हैं, तो आप आशीर्वाद दो। तो जब वापस नारद मुनि बैठते हैं, ऋषभ महाराज उनको यहाँ ले आते हैं, और जैसे ही नारद मुनि के हाथ में रखते हैं, तो नारद मुनि को जो एक दिव्य स्मरण होता है, उनके अंदर तुरंत दिव्य भाव प्रकट होने लगते हैं। तुरंत वो समझ जाते हैं कि यही भगवान की अलादीन शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी की प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको वो वंदन करते हैं, और उनसे कहते हैं खे श्रीमती राधा रानी, अगर आप मुझे पात्र समझती हो तो मुझे कृपा करके आपका किशोर जो स्वरूप है वो दिखाई, उसका दर्शन दीजिए। तो तुरंत श्रीमती राधा रानी जो है वहाँ पर उनका किशोर जो स्वरूप है उसका नारद मुनि को दर्शन देते हैं। और वहाँ नारद मुनि जब निकलते हैं, तो उसके बाद ऋषभानु महाराज कीर्तिदा उनके यहाँ बहुत सारे, जैसे उनको पता चलता है कि उनको पुत्री रत्न प्राप्त हुई है, तो ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बोलती नहीं है, आंखें नहीं खोलती है, तो कैसे हम लोगों को बताएं। फिर जैसे लोगों को पता चला तो बहुत ही लोग आने लगे, मिलने लगे। एक दिन नंद महाराज, माता यशोदा, कृष्ण वो भी यहाँ पर मिलने के लिए आ गए ऋषभानु महाराज के महल में। और जैसे एक माता कीर्तिदा, माता यशोदा दोनों एक साथ मिल रहे हैं, गपचपे हो रही है, और तुरंत कृष्ण क्या किए, उनका जब देखा कि वो यहाँ दोनों माताएं तो अपने बातें करने में लगी हुए हैं, तो कृष्ण रांगते रांगते जो है जहाँ राधा रानी का क्या था क्रल पालना, उसमें उसके पास पहुँच गए, और तुरंत अपना हाथ उन्होंने जो है वहाँ उसके पालने के अंदर डाला, और जैसे राधा रानी की आँखों को कृष्ण का स्पर्श हुआ, हाथ का स्पर्श हुआ, श्रीमती राधा रानी के नेत्र खोल दिए। और जैसे ही लोगों को सब वहाँ पता चला तो इतने प्रसन्न हो गए, और ये जो वार्ता जो है हवा के समान सब और जो है फैलने लगी, और सब लोग प्रसन्न हो गए। इसी का और एक प्रसंग आता है कि माता यशोदा जब मिलने गई वहाँ पर, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब घर में आते, तो कोई भी स्त्री आती है तो अपने गोद में लेती है, किसी के भी घर मिलने जाते, बच्चों को मिलने जाते हैं तो अपने गोद में लेते हैं। तो माता यशोदा ने भी एक श्रीमती राधा रानी को छोटी थी उसको अपने गोदे पे रख दिया, और उसको जब दुला रहे थे तो राधा रानी को अपने गोद में लेने के लिए कृष्ण को नीचे रखा। जब कैसे कृष्ण को नीचे रखा और राधा रानी को अपने गोद में ले लिया, तो कृष्ण वो कोशिश करे अपने वापस माता की गोद में जाने के लिए। बच्चों का ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स दूसरे के बच्चे को ले लेते तो वो भी रोज़ बैठता है गोद में, लेकिन फिर भी उस दिन उसको ज़्यादा बैठना है क्योंकि उसके दूसरे को क्यों लिया। तो कृष्ण जो है तुरंत गोद में चढ़ना चाहते, और वो चढ़ भी गए माता यशोदा की गोद में, और तुरंत राधा रानी को, दूसरे खाली बच्चे जो है क्या उनका बहुत एक स्वभाव होता है, क्या करते दूसरे बच्चे को स्पर्श करना चाहते हैं, बच्चों को आप साथ में रख दो, किधर भी छोड़ दो, तो तुरंत दूसरे के आगे पीछे जाएंगे और दूसरे को कान को हाथ लगाएंगे, बाल को हाथ लगाएंगे, आँख को हाथ लगाएंगे ना, तो छोटे बच्चों को स्वभाव। तो कृष्ण जो है तुरंत गोद में चढ़ गए, और राधा रानी के जैसे ही उनको स्पर्श किया आँखों को, तो राधा रानी ने आँखें खोल दी। तो जैसे जगन्नाथपुर में नेत्रोन मिलन एक उत्सव होता है, तो वैसे यहाँ पर श्रीमती राधा रानी एक इससे देखते हैं कि जब गोलोक से राधा कृष्ण निकलने से पहले राधा रानी तैयार नहीं थे आने के लिए। क्यों? कहते कि इस धरातल पर, अगर भूतल पे हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जाकर देखना है क्या क्या करते हैं, तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं आपको देखने में प्रसन्न हूँ। तो कृष्ण कहते कि चिंता मत करो, ऐसे मैं व्यवस्था करूंगा कि जैसे आप खोलोगे तो मैं ही देखूंगा। तो ये एक वहां से वचन लेकर आए थे, इसलिए तब जब तब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण नहीं दिखे। और वहाँ माता यशोदा, माता कीर्तिदा, ऋषि भानुमानंद महाराज सब लोग खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए, और वहाँ उन्होंने एक उत्सव मनाया। और एक बार जब श्रीमद राधा ने 7 महीने की हुई तो ऋषि भानु महाराज ने उनका अन्न प्राशन संस्कार करना चाहा। तो राधा रानी जब प्रकट हुए उनके साथ उनके सखियाँ भी प्रकट हो गई थी, जो उनके जो अष्ट सखिया है वही आसपास में ही, ललिता, विशाखा, विशाखा तो उसी दिन उसी समय प्रकट हो गए थे। तो ऐसे ललिता कुछ दिन पहले पहले प्रकट हो गए थे। तो सारे अष्ट सखिया जो है, कौन कौन है अष्ट सखी? राधा, वृंदावन बिहारी है बीच में, तो श्याम सुंदर के साइड में कौन कौन होंगे? वृंदावन बिहारी के साइड में ललिता, फिर चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, ये 4 सखियाँ कृष्ण के साइड में कौन सा है? ललिता, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, याद रहेगा। फिर राधारानी के साइड में जो है 4 सखियाँ है, विशाखा है, फिर इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, सुदेवी रंगदेवी, तो विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी थी अष्ट सखियाँ जो है। वही राधा रानी के साथ ही आसपास में दिनों में प्रकट हो गए। और जब 7 महीने के बाद उन्होंने सोचा कि अन्न प्राशन करते हैं, तो सब अपने सगे संबंधियों को उन्होंने आमंत्रण दिया। और वहाँ फिर पूर्णमासी देवी, नंद महाराज, माता यशोदा, कृष्ण, माता रोहिणी, बलराम जी, सब लोग मेहमान, सब लोग आ गए। और उसी दिन सब बड़े, क्योंकि एक उत्सव मतलब आनंद, और भगवान की जो लीलाएं जो है उसका उद्देश्य होता है कि जीवों को, भक्तों को आनंद देना। तो यहाँ सब लोग, ऋषि भानु महाराज ने बड़ी फीस्ट वहाँ पर मनाई, राधा रानी का अन्न प्राशन उत्सव वहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसे अभी यहाँ कल राधाष्टमी है, अरे दामोदर प्रभु और भक्तों ने बड़ा फीस्ट का आयोजन किया है। तो बता रहे थे कि वृंदावन विद्यापीठ में अभी तक 88 तीर्थों का वर्णन किया है, हो गया अभी तक। फिर अष्ट आठ जो अष्टक है वो विद्यापीठ में किए, और कल राधाष्टमी, तो आप सोचिए कितने पकवान हो सकते हैं। तो यहाँ राधा रानी जब फीस्ट वहाँ पर हो रही है, सब लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है चुपके से जहाँ कृष्ण भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खा रहे थे, तुरंत जाकर राधा रानी ने हाथ डाला और कृष्ण के प्लेट से मोरसल लेकर मुँह में डाल दिया, अन्न प्राशन हो गया। जो अन्न प्राशन यहाँ पे करते हैं ना वही होता है कृष्ण प्रसाद। इस तरह से श्रीमती राधा रानी एक बार पौगंड लीला जब हो रही थी, तो अंत पौगंड लीला के अंत में जब कुमार लीला होती है 1 से 5 वर्ष तक, फिर 6 से 10 11 वर्ष तक पौगंड लीला होती है, उसके बाद किशोर लीला चालू हो जाता है। तो यहाँ पौगंड लीला के अंत में एक बार कृष्ण राधा रानी से कहने लगे कि ये सारा पूजा पाठ जो है, विधि है, इस सबका सार जो है आप हैं। अगर कोई आपको न भजकर मेरा भजन करता है या मेरी पूजा करता है, उसे मैं स्वीकार नहीं करता। आप मेरी अलादीन शक्ति हो, महाभावमयी हो, मुझे आनंद देने से आपको आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कृष्ण राधारानी का वर्णन करते, स्तुति करते, कीर्तन करते हैं और वो कहते हैं कि जब आपका कोई स्मरण करता है, प्रेम से अगर कोई आपका स्मरण करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। वशीकरण। कृष्ण कहते हैं कि आपका अगर प्रेम से आपका कोई स्मरण करता है उसके अधीन मैं हो जाता हूँ। आप सर्व गोपियों में प्रमुख हो। वो कहते हैं कि यशोदा से भी आप बहुत श्रेष्ठ हो, महान हो। तो राधा रानी कहते हैं कैसा हो सकता है, वो तो आपकी माता है, उससे श्रेष्ठ मैं कैसे हो सकती हूँ। झूठ, आप तो लंपट हो, हमेशा कृष्ण का झूठ मूठ बोलते रहते तो मुझे खुश करने के लिए। इस प्रकार से राधा रानी कृष्ण से बोलती है। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ दिनों में आप देखना, अगर आप राधा रानी को, यशोदा को आपकी माता मानती हो तो आप देखना कि एक दिन ये जरूर होगा कि कैसे यशोदा आपके चरण पकड़ेगी। बोले कुछ भी पागलपन, ऐसे कैसे हो सकता। तो एक दिन सारे गोप बालक है, गोपिया है, और गांव में जो है एक जगह पर नाव में आनंद ले रहे हैं, क्या कर रहे थे, कृष्ण नृत्य कर रहे थे और सारे गोपिया जो है वहां पर सब आनंद ले रहे हैं। तो इतने में यशोदा माता यहाँ पर आती है और माता यशोदा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग, कृष्ण को नचा रहे हो, ये तो पूरा दिन गायों को चराता है तो इतना थक के आता है और आप शाम को उसको बुलाकर नृत्य कराती हो, ये क्या पागलपन है, उसको भेज दो। तो गोपिया राधा ने कुछ बोलते नहीं, लेकिन गोपिया कहते कि माते ये कृष्ण आपका कृष्ण नहीं है, आपका कृष्ण तो वहाँ थक कर सो गया है, ये हमारा कृष्ण है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं। तो माता यशोदा घर पे जाते हैं, देखते सचमुच में कृष्ण वहाँ सो रहे हैं। तो फिर वापस यहाँ आते हैं तो बोलते हैं वही कृष्ण है, वही रंग है, वही वस्त्र है, सब कुछ वही है। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर है। तो माता यशोदा के मन में विचार था, हम एक काम करते हैं, दोनों कृष्ण के साथ लाते हैं और दोनों कृष्ण के साथ में हम लोग नृत्य देखते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है आपकी इच्छा है। तो फिर सब लोग जो गोपिया कृष्ण जो है नंद भवन में आते हैं और नंद भवन में फिर कृष्ण को उठाते हैं माता यशोदा, आओ वहाँ पर, वो भी आपके जैसे ही दिखता है, आपके जैसे ही रंग है, वर्ण है, वस्त्र है, और आप यहाँ पर हो, दोनों साथ में नृत्य करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले ठीक है। तो कृष्ण जाते हैं, दोनों नृत्य करने लगते हैं, दोनों एक ही है लेकिन दोनों दो हो गए। तो वहाँ पर नृत्य होते लगते, इतना आनंद लेते हैं सब लोग और सब लोग गा रहे नाच रहे। ऐसे करते करते अचानक क्या होता है, यशोदा कृष्ण गोपी कृष्ण में अंतर्दान हो जाते हैं और तुरंत सब लोग गोपियाँ जो है नृत्य खत्म होता है निकलने लगते हैं। तो माता यशोदा, मेरा कृष्ण किधर है। तो बोलते वो क्या पता है। बोलते नहीं नहीं, आपके आपने किधर तो छुपाया है। और खासकर राधा रानी को बोलते आपने मेरे कृष्ण को किधर तो छुपाया है, आपको पता है। तो राधा रानी कहते नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे पता नहीं है, तो नाचते नाचते कहाँ चले गए पता नहीं। तो बोलते नहीं, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। और तब यशोदा माता जो है बहुत रोने लगती है, उनको विनवनी करने लगती है कि राधा कुछ भी करके मुझे कृष्ण को दे दो, मेरे कृष्ण को दे दो, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकते, मेरे कृष्ण के बिना मैं एक सांस भी नहीं ले सकते। और तुरंत ऐसे बोलते बोलते एक, मैं कुछ भी करने के लिए तो मैं तेरे चरण पकड़ती हूँ लेकिन मेरे कृष्ण को दे दो। तो तुरंत बेहोश आ जाते हैं। नहीं, उसके पहले राधा रानी माता यशोदा से कहते कि हे माते आप क्या कर रहे हो, अगर आप कहते कि मेरे चरण पकड़ती हो मुझे, तो ये तो बड़ा अपराध हो गया मेरी तरफ से, आप मेरी माता हो, आप कैसे ऐसे कह सकते हो मुझे, आप ऐसे कैसे धर्म संकट में डाल रही हो। तो माता यशोदा कहते खुश भी हो लेकिन मुझे कृष्ण चारों बेहोश हो जाते, तो कृष्ण पकड़ हो जाते और राधा रानी को अपने आँखों से संकेत करते हैं। और श्रीमती राधा रानी जाकर माता यशोदा के कान में कहते हैं कि कृष्ण तो आ गए, वो तो उधर जाकर सो रहे हैं। और तुरंत जैसे कृष्ण आ गए समझता है तो यशोदा तुरंत उठ जाती है, होश में आकर तुरंत राधा रानी के शब्दों में इतना विश्वास रखती है और तुरंत जाकर वो अंदर जाकर देखती है अपने महल में, तो कृष्ण वहाँ सो रहे थे। तो यहाँ कृष्ण एक श्रीमती राधा रानी कितनी श्रेष्ठ है, कितना उनका प्रेम है, भाव है, उसको दिखाते हैं। तो यहाँ माता यशोदा राधा रानी का जो भाव है निरंतर कृष्ण के सेवा में रहना, इसलिए तो बरसाना से रोज कहाँ आते थे, नंद भवन में, नंदगांव में आते थे भोजन बनाने के लिए कृष्ण के लिए, क्योंकि दुर्वास मुनि का वर था कि अगर राधा रानी के हाथ से अगर कोई भोजन करता है तो वो कभी रुद्ध नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए तो अपने क्षमता से बाहर आकर सेवा करने का वो भाव, इसलिए हम देखते हैं कि वही जो भाव है लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। राधा रानी का भाव है कृष्ण का, कृष्ण स्वयं कृष्ण राधा रानी का जो करुण रस है वो लेकर जीवों को इस संसार से, इस दलदल से, भव सागर से निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का जो करुण भाव लेकर आते हैं, अरे जो हरिनाम संकीर्तन है इसको बांटने आते हैं। और श्रील प्रभुपाद गौर मोहनदेव, श्रील प्रभुपाद के पिताजी जब भी वैष्णव घर में आते थे, श्रील प्रभुपाद कहते कि उनके पिता का वो स्वभाव था कोई भी साधु दिखाई दे वो रोज़ कोई ना कोई साधु घर में रहते थे और उनको भोजन कराते थे, और जब भोजन से निकलते समय पूछते थे तो गौर मोहन एक ही बात कहते थे, क्या कि मेरे जो पुत्र है अभय उनको आशीर्वाद दो कि वो श्रीमती राधा रानी के अच्छे भक्त बने। तो श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है वही लेकर श्रील प्रभुपाद पूरे संसार में अपने क्षमता से बाहर जाकर, राधा रानी का जो भाव है, स्वभाव है, अपनी क्षमता से, कई बार हम जब भक्ति मार्ग में रहते हैं तो अपने जो सहज है उस तक सेवा करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में जब सहजता से जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा हो गया तो हट जाती है थोड़े, तो गर्म हो जाता है दिमाग। लेकिन राधा श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है, क्षमता से बाहर जाकर। श्रील प्रभुपाद का भाव क्या है, क्षमता से बाहर जाकर। 70 साल की आयु में श्रील प्रभुपाद, जो लोग इस उम्र में वृंदावन में जाकर स्थित होना चाहते, वहाँ शरीर छोड़ना चाहते, उस उम्र में श्रील प्रभुपाद बाहर जा रहे और वहाँ जाकर श्रीमती राधा रानी की कृपा, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी थी आच नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरो नाम, जो राधा रानी की कृपा हरिनाम संकीर्तन को बांटना था वो लेकर श्रील प्रभुपाद जाते हैं। क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं मिलती है तब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन कृष्ण न लभ्यते। आचार्य जो है सत्यम सत्यम, ये सत्य है, सत्य बार बार मैं कहता हूँ कि सत्य है, क्या बिना राधा प्रसादेन, राधा श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना कृष्ण न लभ्यते, कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमती राधा रानी का जो करुणा है, अभी हमने अष्टाष्टक के नाम सुने, हम राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के 8 नाम भी सुनते हैं। कौन से 8 नाम हैं, सुबह श्रीमान दामोदर प्रभु ने बताया, एपुलेंस मतलब जो ऐश्वर्य, उसके अनुसार जो नाम है क्या है, श्री जी, फिर एक प्रेम से अगर कहीं किसी को बुलाते हैं, एक श्रीमती राधे का नाम है लाडली, एक रॉयल राजे समान जो है राधा रानी, और फिर यूथफुल युवती के समान जो नाम है, युवती का नाम होता है क्या है राधा रानी का नाम, एक किशोरी तरुणी कुछ किशोरी, और फिर कलरफुल अंग कांति का नाम राधा रानी का गौरांगी, फिर एक ध्वनि उससे आता है रेजोनेंट राधा, और फिर एक राधा रानी के सुंदरता के अनुसार नाम है सुंदरी, और बहुत मधुर नाम है कृष्ण जिसे पूजा करते हैं वो नाम है राधिका। तैसे एक राधा रानी के अष्ट नाम हैं, और अगर इस संसार में हमें टू स्टॉप द जर्नी फ्रॉम टू टूम एंड टूम टू ओम चैंट धुन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इस संसार में एक जो व्यक्ति का जन्म होता है मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होता है जन्म निश्चित है। अगर ये जन्म मृत्यु का चक्र अगर रोकना है तो ये जो धुन है मंत्र है क्या है, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति है, अलादिनी शक्ति हरे, और कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, राम जो सबको आनंद देते हैं। हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार आप सदैव निरंतर भगवान कृष्ण के सेवा में हैं, वैसे मुझे भी निरंतर सेवा में लगने की इच्छा दो, बुद्धि दो। हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, और फिर श्रीमती राधा रानी भी जब देखती है कि कोई प्रामाणिक रूप से अगर सचमुच प्रेम से आकर कोई उनके चरणों का आश्रय लेता है, तो हम राधा रानी क्या करते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ये जीव जो है बहुत प्रामाणिक है, अच्छा है, इसका स्वीकार करो। जैसे कि राधा गोपीनाथ मंदिर में देखते कि राधा ने क्या करे, अर्पण करते कृष्ण के चरणों में, तो वैसे एक उस जीव को राधा ने अर्पण करते कृष्ण के चरणों में, और जब कृष्ण राधारानी का रिक्वेस्ट सुनते हैं वो मना नहीं कर सकते, कान डेर आचार्य वर्णन करते कि मना नहीं कर सकते। घर में भी ऐसा होता है, जब पत्नी कहती कि ये होना चाहिए, कोई पुरुष यहाँ कह सकता है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं कह सकता। तो कृष्ण उस जीव को भले कमियां भी है, लेकिन राधा रानी अगर कहते कि नहीं इस जीव को आप स्वीकार करो, सब कमियों के साथ भी कृष्ण स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये ना कि हम कैसे भी राधा रानी के पास जाए, हमें सांस संवर कर मतलब खाली बाहर से नहीं अंदर से अपने आत्मा को अपने चित्त को पवित्र करके हरिनाम लेकर वैष्णव की सेवा करके जब हम जाते हैं श्रीमती राधा रानी प्रेम से उसका स्वीकार करते हैं। मुझे भी एक 2 मिनट में लूँगा, मेरा वैयक्तिक एक अनुभव है कि कैसे श्रीमती राधा, क्योंकि आज मैं इस आसन पर बैठा हूँ, कोई पात्रता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ राधा रानीज मर्सी। 25 साल पहले मुझे याद है कि जब मैं अपने भक्तिमय जीवन के तूफान से गुजर रहा था, सुनामी था 94-95 के समय, जब राधा गोपीनाथ मंदिर में पहुंचा, बेलगाम से आया था, और तभी इतना तूफान से गुजर रहा था कि हो सकता था शायद उस सुनामी में भव सागर में डूबने ही वाला था, और दूसरे दिन राधाष्टमी थी और मैं गुरु महाराज के पास गया, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के पास, उनको स्थिति पता थी, उन्होंने कहा कि रूप रघुनाथ सब छोड़ दो, अभी टुमारो इज राधाष्टमी, कल राधाष्टमी है, आप पूरा दिन जस्ट वर्क हार्ड। जैसे राधा रानी हम देखते हैं कि कितनी सेवा में रत रहते हैं, अगर राधा रानी की कृपा चाहिए तो उस इंस्ट्रक्शन से, महाराज के इंस्ट्रक्शन से मैंने देखा कि महाराज ने कहा होल डे वर्क हार्ड, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, होल डे वर्क हार्ड, अगर हमें कृपा चाहिए तो हमें मेहनत करनी चाहिए। तो महाराज ने कहा कि पूरा दिन बहुत कठोर सेवा करो, एंड देन इवनिंग राधाष्टमी टाइम गो इन फ्रंट ऑफ राधारानी, आप राधारानी के सामने जाओ और राधारानी से प्रार्थना करो, ओ माय डियर राधारानी, इफ यू सो डिजायर, अगर आप चाहती है तो कृपा करके आप मुझे भक्तों के संग में रखो, यू जस्ट प्रे दिस। और खास कर बोलेगी डोंट फोर्स राधारानी, इफ यू सो डिजायर, राधारानी अगर आपकी इच्छा है तो मुझे कृपा करके भक्तों के संग में रखो। और मैंने वो प्रार्थना की, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। श्रीमती राधा रानी राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण, धन्यवाद।